नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। वेंडेलल ओडम की सीसीएनए 200-301 ऑफिशियल सर्ट गाइड वॉल्यूम 1 सेकंड एडिशन। सिस्को नेटवर्किंग की एंट्री स्तर की प्रमाणन परीक्षा के लिए बनाया गया विस्तृत अध्ययन मार्गदर्शक है। यह कोई सामान्य नेटवर्किंग परिचय नहीं, बल्कि परीक्षा ब्लूप्रिंट के अनुरूप अवधारणाओं, कॉन्फिगरेशन, सोच और पुनरावृत्ति को जोड़ने वाली पुस्तक है। इसका पहला खंड नेटवर्किंग की आधारभूत भाषा इथरनेट, वैन और आईपी रूटिंग समझाता है। आगे के भाग स्विच कमांड लाइन, स्विचिंग व्यवहार, IPv4 एड्रेसिंग, सबनेटिंग और IPv4 रूटिंग जैसे कौशलों पर केंद्रित है। पुस्तक की विशेषता इसका सीखने का अनुशासित ढांचा है। हर अध्याय के आरंभ में स्वयं आकलन प्रश्न है, जबकि अंत में मुख्य विषयों और परीक्षा तैयारी कार्यों से कमजोरियों को लक्षित किया जाता है। लेखक सैद्धांतिक परिभाषा को उपकरणों के वास्तविक व्यवहार से जोड़ते हैं, इसलिए पाठक केवल उत्तर याद करने के बजाय नेटवर्क में पैकेट के मार्ग, स्विच के निर्णय और कॉन्फ़िगरेशन के प्रभाव को समझ सकता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले TCP/IP मॉडल के माध्यम से नेटवर्क संचार की बुनियाद। पुस्तक का आरंभ TCP/IP नेटवर्किंग की उस बुनियाद से होता है जिस पर बाद के सभी कॉन्फ़िगरेशन विषय निर्भर है। इसका उद्देश्य केवल परतों के नाम याद कराना नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि किसी संचार समस्या को अलग अलग कार्यों में कैसे बांटा जाए। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस के स्तरों की चर्चा यह समझने में मदद करती है कि डेटा बनाने वाला प्रोग्राम, विश्वसनीय या अविश्वसनीय परिवहन, आईपी, पैकेट और स्थानीय फ्रेमिंग एक ही यात्रा में अलग भूमिकाएं निभाते हैं। पुस्तक एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन को केंद्रीय विचार बनाती है। भेजने वाला होस्ट डेटा में क्रमशः प्रोटोकॉल जानकारी जोड़ता है और पाने वाला होस्ट उसे उल्टे क्रम में समझता है। यही मॉडल बताता है कि मैक एड्रेस स्थानीय लिंक के लिए क्यों उपयोगी है, जबकि आईपी एड्रेस अलग नेटवर्कों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। परीक्षा तैयारी की दृष्टि से यह ढांचा प्रश्नों में दिए गए प्रोटोकॉल, पते और उपकरणों की भूमिका अलग करने का व्यावहारिक तरीका देता है। तकनीकी कार्य में भी इसका लाभ निदान में दिखता है। उदाहरण के लिए, भौतिक कनेक्शन सही होने पर भी गलत आईपी सेटिंग, डिफॉल्ट गेटवे या ट्रांसपोर्ट सेवा संचार रोक सकती है। इसलिए यह भाग आगे आने वाली स्विचिंग और रूटिंग को बिखरे हुए आदेशों के बजाय एक संगत संचार प्रणाली के रूप में स्थापित करता है। दूसरा, ईथरनेट फ्रेम, स्विचिंग और लेयर टू निर्णयों की व्याख्या। ईथरनेट लैन की चर्चा पुस्तक में नेटवर्क के सबसे आम स्थानीय परिवेश को समझने का आधार देती है। यह ईथरनेट को केवल केबल और पोर्ट का विषय नहीं मानती, बल्कि फ्रेम के माध्यम से होने वाले स्थानीय वितरण की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। फ्रेम में स्रोत और गंतव्य, मैक एड्रेस की भूमिका, स्विच की मैक एड्रेस तालिका और फॉरवर्डिंग या फ्लडिंग के निर्णय इस भाग के प्रमुख विचार हैं। स्विच किसी फ्रेम के स्रोत पते से सीखता है कि एक उपकरण किस इंटरफेस के पीछे उपलब्ध है, फिर वह ज्ञात गंतव्य के लिए फ्रेम को उचित पोर्ट तक सीमित कर सकता है। यदि गंतव्य अज्ञात हो तो उसी VLAN के अन्य उपयुक्त पोर्टों पर फ्लडिंग होती है। यह क्रम समझे बिना स्विच की आउटपुट व्याख्या या समस्या निदान अक्सर अनुमान बन जाता है। पुस्तक ईथरनेट की गति, डुप्लेक्स और ऑटोनिगोशिएशन जैसी अवधारणाओं को भी व्यवहारिक संदर्भ में रखती है। गलत स्पीड या डुप्लेक्स समन्वय से प्रदर्शन और त्रुटियों की समस्या बन सकती है, भले ही लिंक ऊपर दिखे। इस अध्याय समूह का व्यापक महत्व यह है कि पाठक लेयर 2 और लेयर 3 की सीमाओं को पहचानना सीखता है। स्विच सामान्यतः एक ही स्थानीय प्रसारण डोमेन में फ्रेम आगे बढ़ाता है, जबकि अलग आईपी नेटवर्क तक जाने के लिए राउटर का निर्णय चाहिए। यही अंतर आगे की रूटिंग चर्चा को अधिक स्पष्ट बनाता है। तीसरा, सिस्को कमांड लाइन और बुनियादी स्विच प्रबंधन का अनुशासन। नेटवर्क प्रमाणन में कॉन्फ़िगरेशन ज्ञान का अर्थ केवल कमांड याद रखना नहीं है। इस पुस्तक का कमांड लाइन इंटरफेस वाला भाग उपकरण के संचालन ढांचे को समझने पर बल देता है। उपयोगकर्ता, एग्जीक्यूटिव, प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूटिव और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन जैसे मोड अलग अधिकार और अलग कार्यक्षेत्र रखते हैं। किसी इंटरफेस, लाइन या VLAN को बदलने से पहले सही कॉन्फ़िगरेशन संदर्भ में जाना पड़ता है। यह साधारण लगने वाला नियम गलत कमांड, अधूरी सेटिंग और अनपेक्षित परिणामों से बचाता है। पुस्तक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंतर को भी महत्वपूर्ण बनाती है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वर्तमान संचालन को प्रभावित करती है, जबकि परिवर्तन को रीस्टार्ट के बाद बचाए रखने के लिए उसे उपयुक्त रूप से सहेजना होता है। होस्ट नेम, प्रबंधन, आईपी पता, डिफॉल्ट गेटवे, पासवर्ड, सुरक्षा और इंटरफेस स्थिति जैसी बुनियादी सेटिंगें स्विच को प्रबंधनीय बनाने के व्यावहारिक कदम हैं। इसके साथ शो कमांड का उपयोग देखने, सत्यापित करने और त्रुटि खोजने की आदत विकसित करता है। यही आदत परीक्षा के सिमुलेशन नुमा प्रश्नों और वास्तविक नेटवर्क कार्य दोनों में उपयोगी है। पुस्तक का दृष्टिकोण आदेशों की लंबी सूची देने के बजाय कॉन्फिगर, सत्यापित और आवश्यकता होने पर सुधार करने का चक्र सिखाता है। हाथों से अभ्यास के लिए उपलब्ध नेटवर्क सिम्युलेटर सामग्री इस भाग की उपयोगिता बढ़ाती है, क्योंकि कमांड का प्रभाव पढ़ने के बजाय देखा जा सकता है। चौथा, IPv4 एड्रेसिंग और सबनेटिंग को गणना से डिजाइन तक ले जाना। IPv4 एड्रेसिंग और सबनेटिंग इस वॉल्यूम के सबसे निर्णायक कौशल क्षेत्रों में है, क्योंकि यही ज्ञान होस्ट, नेटवर्क और रूटिंग निर्णयों को जोड़ता है। पुस्तक किसी पते को केवल चार संख्याओं के रूप में नहीं देखती। नेटवर्क प्रीफिक्स ये बताता है कि पते का कौन सा भाग नेटवर्क पहचानता है और शेष भाग किसी होस्ट की पहचान करता है। सबनेट मास्क अथवा प्रीफिक्स लंबाई इसी सीमा को स्पष्ट करती है। पाठक को बाइनरी तर्क के सहारे नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मान्य होस्ट सीमा निकालने की क्षमता विकसित करनी होती है। यह कौशल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत मास्क दो अलग नेटवर्कों को एक समझा सकता है या आवश्यक होस्ट क्षमता से छोटी सबनेट बना सकता है। पुस्तक सबनेटिंग को परीक्षा की तेज गणना और व्यावहारिक एड्रेस योजना दोनों से जोड़ती है। एक संगठन के विभागों या स्थानों के लिए अलग नेटवर्क बनाना प्रसारण को नियंत्रित करने, पते बचाने और नीतियां लागू करने में सहायक हो सकता है। डिफॉल्ट गेटवे का विचार भी इसी संदर्भ में आता है। होस्ट्स स्थानीय नेटवर्क से बाहर के गंतव्य के लिए फ्रेम अपने गेटवे को भेजता है, जबकि आईपी गंतव्य दूरस्थ हो सकता है। इस विषय में नियमित अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि उत्तर तक पहुंचने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए। पुस्तक के आकलन प्रश्न और अध्ययन कार्य पाठक को उन कमजोरियों तक पहुंचाते हैं जो केवल पढ़ने से अक्सर छिपी रहती हैं। अंत में IPv4 रूटिंग में राउटर का चयन और सत्यापन प्रक्रिया। IPv4 रूटिंग वाले अध्याय यह समझाते हैं कि राउटर किसी पैकेट के गंतव्य IP पते के आधार पर अगला कदम कैसे चुनता है। यहाँ मुख्य वस्तु रूटिंग तालिका है, जिसमें सीधे जुड़े नेटवर्कों, स्थिर मार्गों और अन्य उपलब्ध मार्गों की जानकारी हो सकती है। राउटर गंतव्य पते को तालिका की प्रविष्टियों से मिलाता है और सबसे अधिक विशिष्ट अर्थात सबसे लंबे प्रीफिक्स वाले उपयुक्त मार्ग को प्राथमिकता देता है। यह नियम ओवरलैपिंग नेटवर्कों वाले प्रश्नों तथा वास्तविक डिजाइन दोनों में अनिवार्य है। पुस्तक स्थिर रूटिंग की उपयोगिता दिखाती है, जहां प्रशासक स्वयं किसी दूरस्थ नेटवर्क तक जाने का मार्ग और नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस निर्धारित करता है। डिफॉल्ट रूट का विचार उन गंतव्यों के लिए उपयोगी है जिनके लिए अधिक विशिष्ट मार्ग मौजूद नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिख देना पर्याप्त नहीं है। इंटरफेस की स्थिति, सही IP एड्रेसिंग, रूटिंग तालिका और एंड टू एंड पहुंच की जांच करनी होती है। इसलिए सत्यापन कमांड और पैकेट के संभावित पथ पर विचार को विषय का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। यह भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाठक को अलग अलग स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ने की सोच देता है। वह समझ पाता है कि स्रोत होस्ट पहले अपने गेटवे को क्यों चुनता है, प्रत्येक राउटर पर फ्रेम क्यों बदल सकता है और फिर भी मूल IP गंतव्य तक पैकेट कैसे पहुंचता है। इस प्रकार रूटिंग को याददाश्त नहीं, नियम आधारित निर्णय प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन विद्यार्थियों, हेल्प डेस्क या IT सहायता पेशेवरों, आरंभिक नेटवर्क प्रशासकों और स्वाध्याय करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे उपयुक्त है, जो CCNA 200, 300, 1 परीक्षा की तैयारी के साथ नेटवर्किंग की मजबूत कार्यशील समझ बनाना चाहते हैं। विशेषतः वे पाठक लाभान्वित होंगे जिन्हें ईथरनेट, IP एड्रेसिंग और रूटिंग के बीच संबंध को चरणबद्ध ढंग से समझना है, न कि केवल छोटे नोट्स या प्रश्न बैंक के सहारे परीक्षा देनी है। वॉल्यूम 1 का दायरा व्यापक पाठ्यक्रम का पहला हिस्सा है, इसलिए पूर्ण परीक्षा कवरेज के लिए इसके सहयोगी वॉल्यूम की भी आवश्यकता रहती है। फिर भी इसका केंद्रित विषय चयन आधारभूत कौशलों को पर्याप्त गहराई देता है। पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता इसके अध्ययन ढांचे में है। अध्याय आरंभ के स्वयं आकलन प्रश्न समय को उन क्षेत्रों पर लगाने में मदद करते हैं जहां ज्ञान अधूरा है। मुख्य विषय सारणियां तैयारी कार्य और अभ्यास प्रश्न पुनरावृत्ति को मापने योग्य बनाते हैं। परीक्षा उन्मुख जांच और हाथों से सत्यापन के बीच संतुलन है। वेंडल ओडम जटिल विषयों को परीक्षा के लिए आवश्यक सटीकता के साथ व्यवस्थित करते हैं।